आज तारीख क्या है? 28 फरवरी 2012 संध्या जागृति कार्यक्रम। हरे कृष्ण। तो बरसाना धाम जो है वो राधा रानी का धाम है और राधा रानी का बचपन वहां गुजरा हुआ है। राधा रानी जब बाल्य अवस्था में थी तो उनको 3 साल 4 महीने की उम्र में वहां पर लेके आए थे। उनका जन्म रावल में हुआ था, फिर रावल में तीन साल चार महीने रहे और वहां से वो बरसाना में शिफ्ट हो गए। लेकिन बरसाना जो है वो उनका चिरंतन धाम, निज धाम, इटर्नल होम, जैसे भगवान का धाम है वैसे राधा रानी का धाम बरसाना है। और जो दुनिया में हम लोग बोलते हैं ना होली, वो होली का जो उगम है वो बरसाने में हुआ। होली का उत्सव जो है वो हमारे यहाँ पर केवल एक दिन होता है, जो इस साल 8 तारीख को है, लेकिन बरसाने में वो 40 दिन का होता है। 28 जनवरी को वसंत पंचमी थी, उस समय होली का आरंभ हो गया है। 8 तारीख तक चलेगा, 28 से लेके 8, यानी कि 40 दिन। तो ये एक विशेष बात है, जब हमारा आयकम चलता है उस समय रोज वहां पर होली का खेल होता है। रोज शाम को 4 बजे जब आरती होती है तो राधा और कृष्ण को वहां पर रंग डालते हैं और उसके बाद में वो सब रंग जो है प्रसाद के रूप में सब लगाते हैं। रोज का रंग होता है। और उस होली के उत्सव का मतलब यह है कि जो भगवान का भक्तों के ऊपर प्रेम है और भक्तों का भगवान के ऊपर प्रेम है उसको प्रकट करने के लिए वो रंग लगाते हैं। और आजकल हम लोग देखते हैं जो होली वो बहुत ही गंदी तरीके की होली होती है, वहां खास करके लड़कियों को छेड़ने के लिए ऑयल पेंट और केमिकल्स लगा देते हैं और वो बहुत भयंकर जो था इतना सुंदर उसको बहुत ही गंदा करके आज हम उसको अनुभव करते हैं। और जिसको सही रूप में इस अच्छा क्या था वो पता नहीं है, वो उसको लगेगा कि यही होली है, ऐसे ही होली होना चाहिए, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या है। तो राधा और कृष्ण जो है वो एक दूसरे का प्रेम जो है वो अलग अलग सुंदर सुंदर रंगों के द्वारा प्रकट करते हैं। बड़ों को पैर पर रंग लगाते हैं आदर के रूप में और छोटों को मुंह पे लगाते हैं, शरीर पर लगाते हैं। और उस समय केवल शुद्ध फूल जो है उसका रंग निकालते थे, बहुत सुगंधी रंग होता है और वो कहीं भी दाग नहीं बनाएगा, कहीं भी बीमारी नहीं देगा, कहीं भी किस प्रकार का भी कष्ट नहीं देगा, कोई एलर्जी नहीं होगी। ऐसा सुंदर द्रव्य था फूलों का, अलग अलग फूलों का, चंपा, चमेली, शाही, जुई, मुद्रा, गुलाब, ऐसे फूलों से वो रंग बनता था और उन रंगों से अपना प्रेम वो व्यक्त करते थे। तो राधा रानी के रंग खेलने के लिए नंदगांव से नंदलाल जो है कृष्ण है वो आमंत्रण देते हैं, आइए रंग खेलने के लिए आइए, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। फिर प्रतिनिधि को सब सखियां मिलकर रंग से भिगा देती है, फिर वो चले जाता है और फिर उसके बाद में कन्हैया ठाकुर जी कृष्ण भगवान रंग खेलने के लिए आते हैं बरसाने में। और एक लट्ठा मार होली होती है वहां पर, वो बहुत देखने लायक चीज है। वो 1 तारीख को है, 1 मार्च को लट्ठा मार होली है। उसके लिए नंदगांव से जो ग्वाल बाल आते हैं उनको सब सखियां बरसाने की जो है लाठी से मारते हैं और लाठी से मारने के बाद उसको बचाने के लिए वो होता ना घमेला, घमेला सर पे लेते हैं, सब वार जो है उस पर ले लेते हैं। और ऐसे कहा गया है कि वो एक गली है, उसका नाम है रंगीली गली। वो रंगीली गली में कई सैकड़ों ट्रक मट्टी डालते हैं उनके होली में और उस मट्टी में वो लट्ठा मार होली होती है। और अगर कोई गलती से किसी को लग गया, जो लट्ठी लग गया, बचा नहीं पाया, कहीं लग गया हाथ पे, हाथ पकड़ा हाथ पे लग गया, सर पे लग गया, تو اسی جگہ کی مٹی کو اٹھا کر وہاں پر لگا دیتے ہیں زخم کے اوپر اور وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے. اور جتنی ٹرک مٹی ڈالی گئی ہے وہ ساری مٹی لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں پرساد کے روپ میں, کیونکہ بہت ادبھت ہولی ہے. وہ اشٹمی کے دن ہوتی ہے اور نومی کے دن 2 تاریخ کو رنگیلی ہولی ہوتی ہے, اس میں سب لوگ رنگ لگاتے ہیں. اور ہم لوگ جو ہولی مناتے ہیں پورنیما کے دن, اس کو کہتے ہیں دھلائی دھولی بندن. جو برج کی رچ ہے اس کو سب لوگ سر پہ لگاتے ہیں, دوسروں کے بھی لگاتے ہیں. اور آج کیا کرتے ہیں لوگ دھولی بندن کے دن, کیا کرتے ہیں گٹر کا کیچڑ اٹھا اٹھا کر سب کے اوپر پھینکتے ہیں. کیا اس کا مطلب تھا اور کیا کر رہے ہیں, کیوں دھولی بندن کرتے ہیں؟ کہ جس دھولی پر بھگوان کرشن رادا رانی چلتے ہیں ان کے چرنوں سے وہ پاون ہو جاتی ہے, وہ دھولی سب لوگ اس دن اپنے سر پہ لگاتے ہیں. دھولی وندن مطلب ہم دھولی کو وندن کرتے ہیں, تو دھلے نہیں کہتے. اتنا سندر اتسو ہے دھولی کا. اور یہ جو بھاو ہے رادا اور کرشن کے بیچ میں وہ اتنا شریشٹھ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں ہمارے جیون کا ادیش ہے. منشیہ کا جیون جو ہے وہ اسی کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم رادا اور کرشن کے پریم کو سمجھیں جو ہولی کے مادھیم سے پرکٹ ہوتا ہے. تو یہ سمجھنے کے لیے سوئم بھگوان آتے ہیں, گورانگ مہاپرو بول کر چیتنیہ مہاپرو. اتنا شریشٹھ بھاؤ یہ کہ بھگوان سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ انہوں نے نرمان کیا ہے, سب کچھ ان کا ہی ہے, لیکن پھر بھی رادا کے من میں ان کے پرتی کیا پریم ہے وہ نہیں سمجھ سکتے. اس پریم کی وجہ سے رادا رانی کو کتنی خوشی ملتی ہے, کتنا آنند ہوتا ہے, وہ آنند کیا ہے وہ بھگوان نہیں سمجھتے. وہ آنند کو سمجھنے کے لیے کرشن بھگوان کلی یگ میں چیتنیہ مہاپرو بول کر آتے ہیں. اور سوبھاگیہ سے جو ہولی کا دن ہے جس میں رادا کرشن ایک سوریہ کا پریم پرکٹ کرتے ہیں, اسی دن چیتنیہ مہاپرو کا جنم ہوا ہے 1486 سال میں. جس دن برسانے میں سب لوگ ہولی کھیلتے ہیں, رادا اور کرشن سکھیاں ہولی کھیلتے ہیں, اسی دن چیتنیہ مہاپرو کا جنم ہوا ہے مایا پور کے اندر. اور یہ مایا پور کی کہانی ایسی ہے کہ مایا پور جو جگہ ہے وہ گنگا ندی کے آس پاس ہے, اور گنگا ندی جو ہے وہ اس طرح سے اس کے برانچ بنتے ہیں, 9 طرح کے دویپ بن جاتے ہیں, بیٹ 9 پرکار کی جگہ بن جاتی ہے کیول گنگا کے ملنے سے اور برانچ بننے سے, اس کو کہتے ہیں نوادویپ. اور یہ جو نوادویپ ہے یہ سوئم رادا رانی نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, کرشن بھگوان کو اپنے پریم سے آکرشت کرنے کے لیے رادا رانی نے اپنے ہاتھ سے یہ نوادویپ بنایا ہے. اتنا سندر بنایا ہے, اس کے اندر لیک ہے ہرے کرشنا. کبھی اس کے اندر اتنے سندر تالاب ہے, سروور ہے, جھرنا ہے, پھول ہے, ویلی ہے, برش ہے, کنج ہے, بیٹھنے کے لیے جگہ ہے, آنند لینے کے لیے جگہ ہے. اتنا سندر رادا رانی نے بنایا ہے. اور وہ کرشن بھگوان کو پکارتی ہے, سوئم مرلی میں جاتی ہے اور کرشن کو پکارتی ہے. تو کرشن وہاں پر آتے ہیں تو اس جگہ کو دیکھ کر اتنے موہت ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں یہی رہوں گا اور یہی آپ کے پریم کا انبھو کرنے کے لیے آؤں گا. وہ کہتے ہیں میں سبھی سکھیوں کو سکھاؤں کو لے کر یہیں پر نواس کروں گا. اور وہ جگہ ہے مایا پور جہاں پر آگے جا کر چیتن مہاپرو نے جنم لیا ہے نیم کے پیڑ کے نیچے. ایک تو یہ اندر کا کارن ہے کہ رادا رانی کے پریم کو انبھو کرنے کے لیے چیتن مہاپرو جنم لیتے ہیں, لیکن دوسرا کارن یہ ہے کہ کلیوگ میں لوگ اتنے پتیت ہیں, اتنے پاپی ہیں کہ ستگن کیا ہے ان کو پتا ہی نہیں. پرانے زمانے میں اگر کوئی استری ہے اور اس کو پیٹ میں بچہ ہے تو پیٹ کے بچے کو مار دینا, ایبورشن کرنا بالکل اتنا بھینکر پاپ تھا کہ ایسے کسی نے کیا غلطی سے تو اس کو گاؤں کے حد کے پار کر دیتے, ایسا ایک زمانہ تھا. زیادہ دور نہیں, دور کی بات نہیں, 100 سال پہلے کی بات. کسی بھی استری نے اگر اپنے پیٹ کے بچے کو مار دیا کسی کارن سے एबॉर्शन कर दिया तो उसको गांव के बाहर निकाल दिया, परिवार को पूरे, पति को भी और सबको परिवार को, क्योंकि पेट के बालक की हत्या करना यह भयंकर पाप है। जो बालक को कोई शक्ति नहीं है, जो बालक कोई किसी के साथ में हमला होने के बाद में कोई प्रतिकार शक्ति नहीं उसके अंदर कि भाई अपने आप को बचाए, उसके अंदर कोई शक्ति है, अगर मैं आपके मारने का आऊंगा तो आप कुछ ना कुछ करेंगे, लात मारेंगे, हाथ मारेंगे, मुक्का मारेंगे, कुछ ना कुछ अपनी सुरक्षा में हम करेंगे। लेकिन जो इतनी सी जगह के अंदर उसको रखा गया है, अंधेरा जगह है पूरा, हाँ पूरा जल है उसके अंदर, ना उसको भागने की जगह है ना कुछ जगह है, वहां पर इंस्ट्रूमेंट औजार डालकर उसको टुकड़े करके बाहर निकाल देते हैं, इतना भयंकर पाप है। और शास्त्र में इसका कोई उतारा नहीं है, ऐसा पाप करने पर उसका कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया। लेकिन आज आप देखेंगे वो सब कायदे से होता है। 1964 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने इसको कायदा बना दिया और उसको ऑफिशियल बना दिया, कोई पाप कम नहीं, सब ऑफिशियल कर दिया, उसको पूरा कर दिया। और आज देखते हैं ना भारतवर्ष में, केवल भारतवर्ष में 35,000 बालक जो है उनकी गर्भ में हत्या हो जाती है, गर्भपात, कितना भयंकर पाप। 35,000 मानव शरीर प्राप्त कर सकते हैं वो वहीं पर नष्ट किए जाते हैं। भगवान मानव का शरीर क्यों देते हैं आपको? क्योंकि आप उनको जान सके, इसलिए मानव का शरीर मिलता है। उस मानव को जन्म लेने के पहले ही उसकी खुद की माता ही मार देती है। और शास्त्र में लिखा हुआ है कि आगे जाकर कलयुग में अपनी ही माता अपने ही बालक का वध करेगी। आप बोलेंगे कैसे कैसे मुमकिन है, हमारे माता ने हमको नहीं मारा, लेकिन आज माताएं अपने बालक को मार रही है, उनको एक ही बच्चा चाहिए और वो 3 बार प्रेग्नेंट हो जाती है, 2 बार के बच्चे की हत्या कर देते हैं और 1 बार का बच्चा रख देते हैं अपने सुविधा के अनुसार, एज पर कन्वीनियंस। ये कलयुग का लक्षण है, इतना भयंकर है कलयुग। और बलात्कार, व्यभिचार, कोई सुनने को नहीं मिलता था आपको, कोई व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ संबंध कर रहा है, कोई स्त्री किसी पर पुरुष के साथ संबंध कर रही है, ये सुनने को नहीं मिलता था आप लोगों को। सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, वो जो मैंने कथा आपको पहली बार सुनाई है, पहले अभी दोबारा बताता हूं। जब परीक्षित महाराज का राज चल रहा था तो कली स्वयं उसके राज में प्रवेश करता है, क्योंकि कली के आने का समय हो जाता है, द्वापर युग समाप्त होता है। तो कली जो है वो क्या करता है, व्यक्ति रूप में राजा के रूप में आता है तलवार लेकर और बैल के 3 पैर काट देता है, और बैल जो है 1 पैर पर लंगड़ाते रहता है, ऐसा कांपते रहता है डर के मारे। तो राजा परीक्षित जो है वो रात्रि के समय राज्य की व्यवस्था कैसी है वो देखने के लिए आते रहते हैं। तो देखते हैं कि हमारे राज्य में एक काला रंग का राक्षसी व्यक्ति धर्म का प्रतीक जो है बैल उसको मार रहा है, तो तलवार निकालता है और कली को मारने के लिए आगे आता है। तो कली क्या करता है, तुरंत उसके पैरों में गिर जाता है, तो राजा मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे मत मारो। और क्षत्रिय का धर्म होता है जो शरण में आता है उसको मारते नहीं है, वो कहता है कि मैं भी आपका प्रजा हूं, जैसे बैल आपकी प्रजा है, जैसे लोग आपकी प्रजा है, मैं भी आपकी प्रजा हूं, तो आप मुझे आपके राज्य में सहारा दीजिए, आसरा दीजिए, जगह दीजिए रहने के लिए। तो परीक्षित महाराज, और आप ध्यान सुनिए, आप परीक्षित महाराज उनको कहते हैं कि तुम्हारे लिए मेरे राज्य में कोई जगह नहीं है, क्योंकि तुम पाप के प्रतीक हो और मेरे राज्य में कहीं भी पाप नहीं है। फिर भी वो विनती करता है मुझे जगह दो। तब परीक्षित महाराज क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनो। परीक्षित महाराज कहते हैं जिस जगह पर हत्या होती है, हिंसा होती है, जिस जगह पर जुआ खेला जाता है, जिस जगह पर व्यभिचार होता है और जिस जगह पर नशा की जाती है, ऐसे जगह पर जाके रहो। एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन होता है ना, तो ब्राउन शुगर, हीरोइन, अफीम, गांजा, चरस, ऐसी जगह पर रह सकते हो जिस जगह पर बिना मतलब किसी जीव की हत्या हो रही है। मतलब मांस खाते हैं ना, तो क्यों खाते हैं, पहले हत्या करते हैं ना उसकी, फिर मांस खाते हैं। भोजन के लिए बहुत पर्याप्त सामान पड़ा हुआ है दुनिया में, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, प्राणी की हत्या करके उसका मांस खाने का प्रयास करते हैं। تو پرشد مہاراج بول رہے ہیں کہ جاؤ جہاں پر ایسی ہتیا ہو رہی ہے اور ماس کا کھانا ہو رہا ہے وہاں پر جاؤ, جہاں پر نشہ کر رہے ہیں لوگ نشیلے پدارتھ لے کر, جہاں پر ویبچار کر رہے ہیں, کسی الگ پروش کے ساتھ میں کوئی سمبند کر رہی ہے, کوئی کسی الگ پروش کا دوسرے سمبند کر رہی ہے, ایسی جگہ پر آپ جا کے رہ سکتے ہو. تو کلی جاتا ہے ہاں, اور کچھ دیر کے بعد لوٹ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے راجیہ میں ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہے جہاں پر لوگ ماسک کھاتے ہیں, ویبچار کرتے ہیں, نشہ کرتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں. تب میں کہاں رہوں؟ کتنی امپورٹنٹ بات ہے یہ پورے ورلڈ کے اندر, کیونکہ راجا پرشت جو ہے وہ ورلڈ کے راجا تھے, چکرورتی سمراٹ تھے, پورے بھارت ورش مطلب پوری دنیا کے راجا تھے. تو پورے ورلڈ کے اندر کلی کو ڈھونڈ کر بھی ایسی جگہ نہیں ملی جس میں کوئی ماس کھاتا ہو, کوئی پرانی کی ہتیا کرتا ہو, کوئی نشہ کرتا ہو, کوئی جوا کھیلتا ہو یا ویبچار کرتا ہو. مطلب کتنا شدھ راجا تھا وہ. ایسا ورنن آتا ہے کہ ان کے راجیہ میں کبھی بھی دن میں ورشا نہیں ہوتی تھی, کیول رات کو ہی ورشا ہوتی تھی اور کیول پریاپت ورشا ہوتی تھی, کبھی زیادہ نہیں کبھی کم نہیں, اور کبھی باڑھ آنا طوفان آنا ایسے ہوتا نہیں تھا. جتنی ضروری ہے اتنی دن میں ہوتی نہیں تھی کام کو ویودھان کرنے کے لیے, رات کو ہی ہوا جب سب لوگ سوتے تھے تو رات کو ورشا ہوتی تھی اور ہر جگہ پر پھل پھول دھانیہ پریاپت ماترا میں تھی, سمردھی تھی, دھن دولت تھی, سمندر میں رتن نکلتے تھے, سب جگہ پر سندر سندر پرکار سے پراپتیاں ہوتی رہتی تھی منشیہ جیون کو چلانے کے لیے. راجا پریشت ہے, یدھشٹھر مہاراج ہے, امریش مہاراج ہے, ان سب کے راجیہ میں ایسا ورنن آتا ہے کہ ان کی بھکتی کی وجہ سے کہیں بھی کوئی اکال نہیں پڑتا تھا, کبھی کبھی طوفان ہوتا نہیں تھا, کبھی بھوکمپ ہوتا نہیں تھا. اور کلیگ میں ہم کیا کہتے ہیں, سب جگہ ویبچار ہو رہا ہے, پشچم جگت میں لوگ شادی نہیں کرتے, خالی چینج کرتے رہتے بس پارٹنرس, ان کو شادی کے بنا بچے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ انمیرڈ ہیں, وواہ کے بندھن میں کسی کو پھنسنا نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں کہ وواہ پھنسیں گے تو کتنا جواب ذمہ دار لینا پڑے گا, بچوں کو سنبھالنا پڑے گا, وصیت بنانی پڑے گی, پیسہ دینا پڑے گا, ڈیورس ہوگا تو پھر اس کو وداغی دینی پڑے گی, اس لیے سوچتے ہیں کہ وواہ نہیں کرے. اس لیے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آج کل ڈیورس کا ریٹ بہت کم ہو گیا ہے دنیا میں, کیونکہ وواہ نہیں کرتے ڈیورس کیسا ہو. سوچو آپ ذرا کتنا دنیا پتت ہو گیا ہے. براہمن لوگ جو ہے وہ سویا ماس کھاتے, سگریٹ پیتے, دارو پیتے, نشہ کرتے, کیا نہیں کرتے ہیں. ہم خود براہمن ہیں جاتے ہیں, ہمارے کاسٹ کے لوگ کیا کرتے ہیں, ہماری پتنی کے کاسٹ کے لوگ کیا کرتے ہیں, سب جانتے ہیں, سب بھرشٹ ہو گئے ہیں. کسی کو گیتا کا جیوا معلوم نہیں, ایک بھی شلوک نہیں آتا ہے. پنڈت جو ہوتا ہے وہ گھر میں پوجا کرنے آتا ہے نا, ستیہنارائن کی پوجا کرتا ہے, تو بیڑی میں کے جاتا ہے, پھر واپس میں آ کر پوجا کرتا ہے, پوجا کے وہاں بیڑی میں کیا آتا ہے پوجا کرتا ہے, اور بیچ میں پوچھتا ہے شلوک بولتے بولتے اسکور کیا ہو گیا, کون ہار گیا, کون جیت گیا. آپ نے دیکھا ہو نا گھر میں کبھی پوجا کرتے ہیں, سب ڈھونڈ اور پکڑ ہے, کوئی بھکتی نہیں ہے. یہ لوگ اپنے کو سوچتے ہیں کہ پوجا ہونی چاہیے, اس لیے کسی کو بلاتے ہیں, وہ بولے گا 15,000 روپے ریٹ ہے میرا, دکشنا کا پہلے ہی ریٹ کرا دیتے ہیں. دکشنا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پریم سے دیتے ہیں براہمن کو, اس کا کاریہ ہونے کے بعد میں. ابھی الٹا ہو رہا ہے, پہلے بولتے میرا ریٹ 15,000 روپے, تو نہیں وہ سستا والا براہمن کو دیکھو کوئی 5,000 والا, تو وہ بولتا ہے کہ میرا ایسا ایسا نیم ہے, یہ چاہیے وہ چاہیے, سب پھل میں لے کے جاؤں گا, سب چاول میں لے کے جاؤں گا. اتنے لوگ گر گئے ہیں, اتنا بھرشٹ ہو گئے جیون. اور ایک کنیا جو ہوتی ہے آج کے زمانے میں, جو اگر وہ جوان ہو گئی ہے تو جوان ہونے کے بعد شادی ہونے تک وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں کے ساتھ سمبند کرتی ہے, نو بڑی دوست پتہ نہیں. ایک جوان لڑکی آج, پہلے زمانے میں تو بولتے نا ورجن, مطلب بنا کسی کچھ ہوئے ہوئے اس کا وواہ ہوتا, اور ایک پتی کیول, بس کسی کو دیکھے گی بھی نہیں, وہ وچار بھی نہیں کرے گی کسی کا, ایک ہی کے لیے پورا جیون اس کو سمرپت کرے گی, اور پتی بھی کسی کو نہیں دیکھے گا, اپنے پتنی کے اندر ہی پریم شردھا جو بھی ہے رکھے گا. اور آج کل کیا چل رہا ہے, ایک بلڈنگ کے اندر سب اتنے گڑبڑ لگڑے ہوتے رہتے ہیں, اتنے وبچار ہوتے رہتے ہیں, کوئی کسی کا سو رہا ہے, کوئی کسی کا سو رہا ہے, کوئی لڑکی شادی کے پہلے گربھوتی ہو رہی ہے, پھر بھاگ رہی ہے دکان میں دواخانے میں بچہ گرانے کے لیے، اتنا سب اتنے سب پاپ ہو رہے ہیں، اور دکان میں ہوٹل کے اندر جو ماس ہے اس کے اندر بالک کے ماس بھی آتے ہیں، بالک کی انگلی بھی آتی ہے ماس کے اندر، منشیہ کا ماس جو ہے وہ آج کل لوگ کھاتے ہیں، بھارت میں بھی ہو رہا ہے، آپ کو پتا نہیں ہوگا شاید، بھارت کے اندر بھی چھپ چھپ کے پرانی کے ماس کے اندر جو گرم پات کرتے نا وہاں سے وہ بچے کو لے کے آتے ہیں، بیچتے ہوئے تو وہ کیونکہ ٹکڑے کرتے نا اس کے لڑکے پورے ٹکڑے کر کے پورا ماس نکال لیتے ہیں باہر، اور وہ جو ماس ہے وہ ہوٹل والے کو خرید لیتے ہیں، اور اس کو بکرے کے اور اس کے ماس میں تھوڑا ڈالتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، اور سب بیچتے ہیں، اتنے پراپت ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ کوئی اچھی کہانی نہیں ہے بتانے کی، لیکن یہاں بیٹھ کر ویاس پیٹ پر بیٹھ کر میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ کلیوں کی حقیقت ہے، جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں اس کا حقیقت ہے۔ آپ کی لڑکی کو اگر جوان ہو گئے تو آپ رات کو اکیلے باہر نہیں بھیج سکتے، تو کبھی تو حملہ کرے گا اس کے اوپر، کیا کرے گا، کبھی ٹرین میں جاتے ہیں تو موبائل پیسہ چوری ہو جاتا ہے، پہلے کوئی بھی چوری نہیں کرتا تھا، آپ سوچ سکتے ہیں ایسا کوئی سمے تھا جیون میں جب کوئی چوری ہوتی نہیں تھی، سب لوگ سنتوشٹ تھے، اپنے آپ جو بھی کچھ ہے سنتوشٹ ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کیا ہے، ایک وستو ہم لوگ یہاں رکھیں گے اور وہاں دیکھیں گے تو یہاں سے وہ غائب ہو جاتی ہے، کوئی وستو بس اسٹاپ پر کچھ کل بھول گیا، دو منٹ کے اندر غائب ہو جاتی ہے، آپ دو منٹ کے اندر واپس لوٹ کے آئیں گے ارے بھول گیا میں، تو ادھر سے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ کتنی کتنی وستو آپ کو بتائیں، ہمارے بالک جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور کیا کیا غلط سیکھتے ہیں ٹی وی کے اندر دیکھ کے، ننگا ناچ ہوتا ہے ٹی وی پر، لو افیئر سیریل میں کیا کیا دکھاتے ہیں، گندا سب دکھاتے ہیں، وہ دیکھ کر مرڈر ہو جاتے ہیں، وہ پکچر میں دیکھتے ہیں کیسا مرڈر ہو رہا ہے، تو بالک بھی۔ ایک کہانی ایسی میں نے سنی تھی کہ دو سال کا بالک جو ہے وہ ایک دن، اس کی چھوٹی بہن ایک سال کی ہے، اس کا چاقو سے خون کر دیا، کیونکہ دو سال کی عمر میں اس بالک نے 40 پکچر دیکھے تھے خون خراب ہوئے والے ٹی وی پر، دن بھر ٹی وی بیٹھے دیکھتے ہیں، اور 40 پکچر کے اندر کیول خون خراب ہی ہو رہا ہے، کوئی چاقو مار رہا ہے، کوئی بندوق مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی پہاڑ سے پھینک رہا ہے، تو بالک اس سے اتنا پربھاوت ہو گیا، اس نے کھیل کھیل میں کچن سے چاقو لیا اور چھوٹی بہن کو مار دیا اس کو، ہاں ہنس رہا، جب ماتا پتا گھر لوٹ کے دیکھا تو بچہ ہنس رہا ہے اور وہ اپنی بہن کو چاقو مار کے رکھا ہے، کیوں ہو رہا ہے، بالک کو پتا نہیں اچھا برا کیا ہے، وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، دن بھر دیکھ رہا ہے، ماتا پتا کام پہ جا رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں بچوں کو دیکھنے کے لیے، بچے کو بھی آن کر کے لگاتے ہیں، بچہ ٹی وی دیکھ رہا ہے، یہ سب غلط سنسکار بچوں پر پڑ رہے ہیں، اسی بھاونا سے بڑے ہوتے ہو تو آگے جا کر پھر وہی اسمگلنگ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں گورنمنٹ کا، کیا کیا غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ کلیوگ کی بھینکر اوستھا دیکھتے ہوئے، جس میں کوئی بھگوان کی بھکتی نہیں ہے، کوئی اچھے گن نہیں ہے، بھگوان کے وشے میں کوئی کسی کو روچی نہیں ہے، کوئی کسی کو ہیلپ نہیں کر رہا ہے، ہر وقت دوسرا آدمی کا دویش کر رہا ہے، بھائی بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے، ماتا پتا سے بچہ جھگڑا کر رہا ہے، ماتا پتا جھگڑا کر رہے ہیں، کوئی اس میں فیملی یونٹ پہ پریم نہیں بچا ہوا ہے، پڑوسی کے سامنے ہم لوگ پریشانی کر دیتے ہیں، اپنا کچرا نکالتے ہیں اور پڑوسی کے دروازے کے سامنے پھینک دیتے ہیں، ہمارے بچپن میں پڑوسیوں میں کتنا پریم ہوا کرتا تھا، جو کچھ کھانا بنایا تو پڑوسوں کو بھی لا کے دیتے تھے، کچھ میٹھا بنایا تو سب کو بانٹ کے دیتے تھے، وہ بنا کے تو ہم کو لا کے دیتے تھے، یہ بچپن میں ہم نے انبھو کیا ہے۔ ابھی جب میرا روم میں رہنے کو آئے تو سب فلیٹ بند، کہیں بھی جاؤ سارے دروازے بند، سامنے والے گھر میں کون رہتا ہے، اس کو کتنے بچے ہیں پتہ نہیں، کس کی شادی ہو رہی ہے، کسی کو نئی بہو گھر پہ آئی ہے، نوبڈی نوز، کسی کا ڈیتھ ہو رہا ہے بلڈنگ کے اندر، اس کو پتہ نہیں، بلڈنگ میں 28 فلیٹ کے اندر کون رہتے ہیں پتہ نہیں، کوئی ہم لوگ اگر کسی کو ایمرجنسی آتی ہے تو کس کو کانٹیکٹ نہیں ہے، کس کو بلائیں معلوم نہیں، فلیٹ سسٹم ہو گیا نا، سب دروازے بند، وہ کسی کو دروازے کی بیل مارنی ہے تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ ماروں کیا بیل، بولیں گے کیا، غصہ آئے گا کیا بیل لگانے کے بعد، اتنی بھینکر اوستھا ہے ہم لوگ جی رہے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ اوستھا کیسی ہے، اس میں سدگن نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کسی کی ملتی ہے، کوئی کسی کو یاد نہیں رہتی کیا ہو رہا ہے. سب لوگ ایک دوسرے کا دویش کرتے ہیں, جو اچھا گن نہیں ہے, بھگوان کے پرتی پریم نہیں ہے. تو یہ سمے دیکھ کر بھگوان سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کا ادھار کیسے کیا جائے, اور اتنے پاپی لوگ ہیں تو ان کو کیا بولیں گے, آپ سب کچھ تیاگ کر کے جنگل میں دھیان کرنے جاؤ, تپسیا کرو. کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے. کس کو انٹرسٹ تپسیا کرنے میں؟ وہ ویرار سے چل کے ٹرین پکڑیں گے روز, وہ تپسیا کریں گے پیسے کے لیے, لیکن آپ بولیں گے بھگوان کا نام بھجن کرو فوٹو کرو, نہیں کریں گے. بھگوان کی کتاب پڑھو, نہیں پڑھیں گے. گندی میگزین پڑھیں گے فلم کی, کون کس کے ہاتھ میں لفڑا کر رہا ہے, کون کس کے ہاتھ لو افیئر کر رہا ہے, کس کے ہاتھ لو ٹوٹ گیا, کس کا نیا لفڑا ہو رہا ہے, یہ سب اسٹوری آتی ہے اس کے اندر. وہ سب بڑے چاو سے پڑھتے ہوئے, کون کس کا خون کر رہا ہے, کون کہاں بم بلاسٹ کر رہا ہے, وہ سب بہت اچھی طرح سے پڑھتے ہیں. کون سی پارٹی سے کون سا آدمی یہاں سے وہاں گیا, کون سی پارٹی سے واپس لوٹ کے آیا, سوگروہی واپس لوٹ کے آیا, وہ سب چاو سے پڑھتے ہیں. لیکن بھگوان کے وشے میں, بائبل میں, قرآن میں, گیتا میں کیا لکھا ہے, کسی کو انٹرسٹ نہیں. تو یہ سب دیکھتے ہوئے بھگوان سوچتے ہیں کہ میں ان کو نہ تپسیا کرنے کو بول سکتا ہوں, نہ دھیان کرنے کو بول سکتا ہوں, نہ مندر میں گھر میں پوجا کرنے کو بول سکتا ہوں, کہ گھر میں مندر کی پوجا کرو, وہ بھی نہیں کر سکتا ہوں. تو بھگوان سوچتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے, کریں گے ان کے لیے. وہ کہتے ہیں میں سوئم آؤں گا, میں خود آؤں گا, اور میرا نام جو ہے وہ سب کو دوں گا, اور سب نیم کینسل کر دوں گا. پہلے کچھ بھی نیم پالن مت کرو, خالی میرا نام جب کرو بس. کلی کالا نام روپے کرشن اوتار, سوئم کرشن جو ہے وہ جو ان کا پریم ہے بھکتوں کے پرتی, وہ اپنے نام میں ڈال کر وہ سب کو دینے کے لیے آتا ہے. تو چیتنیہ مہاپرو کا اوتار ہوا نا, اتنا بھینکر سمے تھا وہ کہ براہمن لوگ سال بھر میں ایک بار بھی کرشن کا نام لیتے نہیں تھے, ایک بار بھی سال میں. اور کبھی اماوسیہ کے دن سنان ندی میں کرتے تھے تو کیول مذاق مذاق میں گووند گووند بولتے تھے. اور براہمن لوگ جو سماج کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ لوگ اپنی گڈا گڈی کا شادی کرتے تھے, بہت پیسہ خرچ کرتے تھے گڈا اور گڈی کی شادی کرنے میں. گڈا گڈی مطلب کوئی جیونت نہیں ہوتا ہے, کھلونا ہے وہ, لیکن تمہاری گڈے اور میرا گڈا ایسے شادی کر کے بہت پیسہ خرچ کرتے تھے, دارو پیتے تھے, اس کے اندر ماس کھاتے تھے. اتنی بھینکر اوستھا تھی چیتن مہاپربھو آنے کے پہلے, 500 سال پہلے کی بات ہے. تو مہاوشنو کے اوتار جو ہیں وہ آتے ہیں ادویت آچاریہ بن کر اور خوب پرچار کرتے ہیں بھگوان کے نام کو, سب کو سمجھانے کا پریاس کرتے ہیں. لیکن براہمن کو بھی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے, تو ویشیہ شودرا کشتریہ کو تو کیا انٹرسٹ ہے, اس میں ہی نہیں انٹرسٹ. تو پھر ایک سمے ایسے آتا ہے کہ وہ پرچار کر کے تھک جاتے ہیں, لیکن کوئی بھی براہمن کو بھی اس میں بھکتی میں انٹرسٹ نہیں. تو وہ کتاب پڑھتے ہیں, بھگوان کا گرنتھ پڑھنے لگتے ہیں. اس میں ان میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جو ویکتی شالیگرام شیلا کی تلسی اور گنگا جل اور چندن سے سیوا کرے گا, اس کی من کی اچھا بھگوان پوری کرتے ہیں, ایسا وہ پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ شالیگرام شیلا ہوتے ہیں بھگوان کا سوئم سوروپ, شالیگرام شیلا کی گنگا جل تلسی اور چندن سے روز جو سیوا کرے گا اور جو پرارتھنا کرے گا وہ بھگوان پوری کر دیتے ہیں. ہاں دیپک ہرے کرشنا. تو یہ سب کچھ پرچار چھوڑ کر گنگا کنارے شالیگرام کی شیلا لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور رو رو کر تلسی چندن اور گنگا جل ارپن کرتے ہوئے رو رو کر پرارتھنا کرتے ہیں کہ ہے بھگوان, ابھی ان لوگوں کو بچانے کے لیے میرے پاس شکتی نہیں, میں نے سارا پریتن کر لیا, لیکن یہ لوگوں کا ادھار کرنے کے لیے ابھی آپ کو ہی آنا ہوگا, بنا آپ کے آنے سے ان کا ادھار نہیں ہو سکتا ہے. مجھے ان کو دیکھ کر بہت دیا آ رہی ہے, بہت کرونا آ رہی ہے, بہت دکھ ہو رہا ہے, دیکھیے ان کو کتنا پاپ کر رہے ہیں لوگ, دھرم کے نام پر براہمن ہو کر بھی اتنا پاپ کر رہے ہیں, کیسے بچیں گے, کیسا ادھار ہوگا, یہ نرک میں جائیں گے, جانور بنیں گے, کتنے جنم تک کشٹ ہو گئے گے. تو ان کی پرارتھنا بھگوان نے سنی اور نرنے لیا کہ میں چیتنیہ مہاپربھو کراؤں. اس لیے ادویت آچاریہ کو ہم دھنیواد دیتے ہیں کیونکہ تو کرپا بلے پائی چیتنیہ نتائی, کیونکہ انہوں نے اتنی کرونا سے بھگوان کو پکارا, ان کی پکار سن کر بھگوان چیتنیہ مہاپربھو کے روپ میں آئے اور انہوں نے اپنا نام سب کو دیا. اتنی دیا ہے بھگوان کے اندر کہ گولوک دھام جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ پریم کا دھام ہے, وہاں پر سب لوگ پریم کرتے ہیں بھگوان پر. وہ پریم جو ہے گولوک دھام کا वो हरे कृष्णा महामंत्र के अंदर डालकर वो स्वयं लेकर आए हम लोगों को देने के लिए, हम लोगों को बांटने के लिए। हाँ सोना मत, हरे कृष्णा स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान का प्रेम जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र में डालकर आपको देने के लिए आए और उसको हमको लेना है। ये जो बोध पूर्णिमा का समय है ये बोध भगवान की हम पर जो दया है उसका उत्सव है। वो किसी के हाथ से भेज सकते थे ना उसको, लेकिन वो खुद आया। खुद आदमी कौन से समय कार्य करता है, समझो आपके घर में शादी का उत्सव है, आपकी बेटी की शादी है, बहुत सारे काम है उसके अंदर, टेंट वाले को बुलाना है, खाना वाले को बुलाना है, कुर्सी वाले को बुलाना है, मंडप डालना है, पर्ची को बुलाना है, कार्ड छापने हैं, कार्ड बांटने हैं। तो कार्ड बांटने का समय जब आता है तो बहुत सारे कार्ड पोस्ट से भेज देते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो घर का मालिक जो होता है जिसकी बेटी की शादी है वो खुद हाथ में कार्ड लेके उन व्यक्तियों को मिलने जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। और शादी के दिन भी सबके लिए सबका काम बांट देता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग आने वाले हैं गेस्ट लोग उनको जब भी कुछ स्वागत करता है, करते ना हम लोग नहीं करते, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट काम जो होता है वो खुद करता है। जैसे भगवान जब भी धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ था ना, तो भगवान ने सबसे इम्पोर्टेंट काम अपने जिम्मे ले लिया। क्या 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 था काम था वो, तो साधु लोग आएंगे तो उनके चरण धोने का काम मैं करूंगा, साधु लोग को स्वागत उनके चरण धोकर मेरे पितामह से मैं उसके चरण पोछूंगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम भगवान ने अपने हाथ में लिया। वैसे ये काम जब वो खुद कर रहे हैं, खुद गौलोक वृंदावन से रूप बदल कर यहाँ पर अवतार ले रहे हैं और जो देना है वो अपने हाथ से सबको बांट रहे हैं, इसका मतलब कितना महत्वपूर्ण काम होगा वो। अगर इतना महत्वपूर्ण काम नहीं होता तो किसी के हाथ में बंटवा दे, तो कहते तुम जाओ इंद्र अवतार लेके, तुम जाओ वायुदेव, तुम जाओ हनुमान जी, तुम जाओ, और ऐसा बांट गया। और वो उनका अवतार जो था वो इतना महत्वपूर्ण था, इतना महत्वपूर्ण था कि उस अवतार के समय भगवान के बाकी सारे अवतार के जितने भक्त थे वो सब लोग भेष बदल कर आए। जैसे कि नरसिंह भगवान जो अवतार का भगवान था उसका भक्त कौन है, प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी भी वासुदेव दत्त बनकर आए। स्वयं महाविष्णु अद्वैत आचार्य बनकर आए, स्वयं बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर आए, नारद मुनि सब जगह घूमते हैं, सभी युगों में घूमते हैं, वो श्रीवास पंडित बनकर आए, राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित बनकर आए, रूप मंजरी लवंगा मंजरी जो भगवान की सखियां हैं राधा रानी की वो सब गोस्वामी बनकर आए, सत्यभामा जो है वो जगदानंद पंडित बनकर आए। ऐसे भगवान की सारी सखियां अलग अलग अवतारों के जो भक्त थे भगवान के वो सब लोग अलग अलग रूप धारण करके इसमें अवतार लेते हैं, क्योंकि ये लीला जो भगवान की है वो इतनी अद्भुत लीला है। इसमें भगवान जो है न शस्त्र धारण करते हैं न अस्त्र को धारण करते हैं। संगो पंगास्त्र पार्श्वदा, इस अवतार में भगवान कोई अस्त्र और शस्त्र धारण नहीं करते। कृष्ण के रूप में चक्र लेके आते हैं, राम के रूप में धनुष लेके आते हैं, नरसिंह भगवान के रूप में नाखून लेकर आते हैं। हर अवतार में कुछ ना कुछ शस्त्र अस्त्र लेके आते हैं और किसी ना किसी का वध करते रहते हैं, है ना। हिरण्याक्ष के रूप हिरण्याक्ष को मार डाला वराह अवतार में, हिरण्यकश्यप को मार डाला नरसिंह अवतार में, परशुराम के अवतार में सब क्षत्रियों को मार डाला परशु लेकर। हर अवतार में किसी ना किसी का वध किया है, कोई ना कोई शस्त्र धारण किया है, और हर अवतार में केवल उसके ही उनके भक्तों ने जन्म लिया है। जैसे नरसिंह अवतार में प्रहलाद का जन्म हुआ है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में जितने भी अवतार हो गए उनके सारे भक्त जो है वही अवतार में जन्म लेते हैं। हनुमान जी भी आए मुरारी गुरु का बनकर, हर प्रकार के भक्त जो है उसके अंदर आए। इतनी सुंदर कथा है महाप्रभु के जन्म की, महाप्रभु के लीलाओं की। चैतन्य चरितार्थ उसका नाम है, तो चैतन्य चरितार्थ केवल प्रेम का लक्षण है उसके, केवल प्रेम का कथा है उसके। कैसे भगवान अद्भुत कथा अद्भुत लीला करते हैं, सबको प्रेम बांटते हैं, और कैसे कैसे भक्त आते हैं उसके अंदर। जब प्रहलाद अवतार लेकर आए उनका नाम था वासुदेव दत्त, वासुदेव के हृदय में इतनी करुणा थी, इतनी करुणा थी वो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, हे चैतन्य महाप्रभु मैं देखता हूं दुनिया में इतने पाप हो रहे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, इतने पाप का बोझ उठाकर जिएंगे तो वो कैसे, मरने के बाद क्या होगा उनका, कहां जाएंगे वो, मुझे बहुत दया आ रही है उनके ऊपर। तो मेरे आपके चरणों में एक विनती है, क्या विनती है कि ये सबके जितने भी पाप है ना दुनिया के लोगों के, ये सब मेरे पे डालो और मैं वो सब पाप के फल भोगूंगा, जन्म जन्मांतर तक नरक में जाके जन्म लेते रहूंगा और ये पाप उनके में, उनके पाप जो है उसका फल मैं भोगूंगा, लेकिन भगवान इन सबको आप अपने धाम में लेके जाना। अपने धाम में लेके जाने के लिए क्या प्रॉब्लम है, उनके पाप है ना, वो पाप की वजह से आपके धाम नहीं आ सकते, वो सारे पाप आप मेरे पास दे दो, उनको फ्री कर दो और फ्री करके अपने धाम में लेके जाओ। तो महाप्रभु चैतन्य ये बात सुनकर रोते हैं, तो कहते तुम इतने शुद्ध भक्त हो, तुम भी उनके पाप लेते हो। मैंने कहा तुम सोचते हैं कि क्या करूं, उनको देखकर मुझे दया आ रही है। तो महाप्रभु सोचते हैं कि ना तुमको इनके पाप का फल भुगतना पड़ेगा, केवल तुमने इच्छा किया है, इसलिए मैं इन सबके पापों से उनको मुक्त कर दूंगा और सबको भगवान अपने धाम में लेके जाऊंगा। आप सोच सकते हैं कोई ऐसा व्यक्ति हो किसी एक व्यक्ति का पाप लेने को तैयार है क्या, नहीं ले सकते। अरे वो था ना वाला कोड़ी, वो रोज हत्या करता था, नारद मुनि उसको मिले, नारद मुनि बोले ये क्यों कर रहे हो ऐसा, तो क्या करूं बच्चों को और पत्नी को मुझे पालना है ना, इसलिए मैं ये हत्या करता हूं, मेरा कोई व्यवसाय है, मेरा पेशा है। तो कहते हैं कि इतना सारा पाप हो रहा है, आप जानवरों को मार रहे हो, उसका पाप का क्या होगा, तुम्हारी पत्नी और बच्चे इस पाप में भागीदार बन सकते हैं क्या, पूछ क्या हो। तो वो घर पे जाता है और पत्नी को कहता है कि तुम्हारे लिए मैं सब कर रहा हूं, एक प्राणियों की हत्या करके उनको बेचता हूं, पैसा लाकर तुमको खिलाता हूं, तो मुझे उम्मीद है आशा है कि तुम मेरे पाप में सहभागी होगी। तो पत्नी कहती है नहीं हो सकती, तुम्हारा पाप तुम जानो, आई डोंट नो। बच्चों को पूछता है, बच्चा बोलता है नो सर सॉरी। एक पिता बालकों को और पत्नी को पालने के लिए वो कर रहा है, काम कर रहा है, वो सोच रहा है कि हमारा जो भी हिसाब किताब पापों का है हम लोग बांट के लेंगे, मेरा पाप जो है मेरी पत्नी शेयर करेगी, लेकिन पत्नी भी कह रही है ना कह रही है, तो उसको बोझ होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, तो वो पाप करना बंद कर देता है। नारद मुनि कहते हैं राम का नाम लो, बोले नहीं रहा, मुंह से निकलने रहा है, बोल रहे मरा 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 बोलो, तो मरा 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 ऐसे पुकार में उसका उद्धार होता है। तो ये मैंने क्यों बताया आपको कहानी कि किसी की पत्नी और पति भी पाप का बोझ लेने को तैयार नहीं है, तो और किसी का बोझ क्या लेंगे हम, पड़ोसी का और पड़ोसी के पुत्र का और किसी देश का क्यों लेंगे हम, क्या मतलब है हमारा। लेकिन वासुदेव दत्त जो है जो प्रहलाद का अवतार है, भगवान से विनती कर रहे, ऐसे ऐसे अनोखे भक्तों का वर्णन भगवान की लीला में आता है चैतन्य चरितामृत। इतने करुणा अवतार है कि किसी को वो शस्त्र लेकर मारते नहीं है, जितने सारे पापी हैं उनका उद्धार कर देते हैं, माफ कर देते हैं। इसलिए संत हुए हैं, उनका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर। वो कहते हैं कि हे चैतन्य महाप्रभु आप करुणा अवतार हो और आप जैसी दया किसी ने भी नहीं किया आज तक। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आपके इतना दयालु और कोई नहीं है। पतित पावन हेतु तरो अवतार, आपका अवतार किस लिए हुआ है, पतित लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है। बाद में कहते हैं कि मेरा नंबर फर्स्ट है उसके अंदर कि मुझे मेरे इतना पापी और कोई नहीं है। वो समा पतित प्रभु न पाई वे आर, मुझ जैसा पापी आपको ढूंढकर भी नहीं मिलेगा, इसलिए मेरा नंबर पहला है उद्धार होने के लिए। उद्धार करने का लाइन लगी हुई है तो मेरा नंबर पहला है, वो कहते हैं अपने आप को इतना पापी समझ रहे हो संत होते हुए भी। तो महाप्रभु चैतन्य को समझना बहुत मुश्किल है, वही कृष्ण है जो तो चक्र लेकर कृष्ण अवतार में सबका बूंदी छाट देते हैं, धनुष लेकर गदा लेकर कृष्ण अवतार में सब कुछ यूज किया उन्होंने, कृष्ण अवतार में धनुष गदा सब कुछ लेकर उन्होंने राक्षसों का वध किया है, पृथ्वी का भार कम कर दिया है राक्षस के बोझ से। लेकिन वही कृष्ण जब अगले अवतार में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं कोई शस्त्र धारण नहीं करते हो, और उतने ही पापी, उससे भी अधिक पापी लोग मिलते हैं उनको, उनको केवल गले मिलकर हरे कृष्ण मंत्र देकर उसका उद्धार कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कलयुग में सब पापी लोग हैं, लेकिन एक बार भी अगर श्रद्धा से कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा तो मैं उसको काट दूंगा। लेकिन उनकी एक ही कंडीशन है, वो कहते हैं पाप नहीं करना चाहिए बस, पहले कितना भी पाप किया होगा नो प्रॉब्लम, मैं सब माफ कर दूंगा। लेकिन जब आप जान लिया है इस बात को कि ये पाप नहीं करना है और हरे कृष्ण महामंत्र भगवान का नाम स्वीकार कर रहे हो, उसके बाद पाप माफ करो तो मैं आपको माफ कर दूंगा। और ऐसे पाप को बंद करने के बाद में एक बार भी आप नाम लोगे मेरा तो मैं आपको सब पहले पापों से मुक्त कर दूंगा और मरने के समय मेरे धाम में लेके जाऊंगा। ऐसा उन्होंने वादा किया, ऐसा वादा किसी भी अवतार में नहीं किया। रावण को भगवान ने माफ नहीं किया, उसको वध कर दिया है ना। एक अकेले को वध नहीं किया, रावण ने अकेले से सीधा हरण किया था, लेकिन जब वध किया भगवान ने पूरे परिवार का वध कर दिया, खत्म कर दिया, बेटे को भाइयों को सबको मार दिया भगवान एक व्यक्ति के पाप की वजह से। इतना भयंकर दंड भगवान ने दिया है अपने पहले अवतार में, लेकिन ये अवतार में वही रावण जो है वो जगाई बनकर आता है, वही कुंभकर्ण जो है मदाई बनकर आता है, लेकिन उनको मारते नहीं, गले लगाते हैं और वादा लेते हैं, एक ही वादा चाहते हैं पाप मत करो बस। और वो क्या कहते हैं, कौन से सबसे बड़े पाप है, चार सबसे बड़े पाप, उसके आगे तीन भी है, प्राणियों की हत्या करके उनका मांस खाना, विवाह के बिना किसी स्त्री से या पुरुष से संबंध रखना, व्यभिचार कहते हैं उसको, किसी प्रकार का नशा करना जो कलयुग में बहुत ज्यादा हो रहा है, ब्राउन शुगर, ये ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम, स्मगलिंग होता है उसका, और जीवन बर्बाद कर रहे लोग अपना, वो प्रकार के नशा करना, और भगवान की प्रॉपर्टी जो है वो जुए पे लगाना, तो भगवान ने हमको दिया है उसको दांव पे लगाना, ये चार वो है भयंकर पाप माने गए। उसके आगे के तीन पाप जो है, एक है एबॉर्शन करना, निष्पाप जीव की गर्भ के अंदर हत्या कर देना, तो किसी भी व्यक्ति को खून करना स्वार्थ के लिए, ये भी भयंकर पाप माना गया, और विश्वासघात करना ये भी सबको पाप माना गया, ये जगन्य पापों के अंदर पाप माने गए, किसी की श्रद्धा को तोड़ देना, विश्वासघात करके स्वार्थ के लिए कुछ काम करना, ये पाप अगर हम छोड़ते हैं तो तुरंत शुद्ध बन जाते हैं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप बोलेंगे मांस नहीं खाना तो खाना क्या है, जो भी वेजिटेरियन खाना खाएंगे उसको भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाना है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे पास अगर धाम में जाना है इस दुनिया को छोड़कर, जो जन्म मृत्यु वाली दुनिया है यहां कष्ट भोगना पड़ता है, इसको छोड़कर भगवान के धाम में जाना है तो केवल दो काम करवा, एक तो पाप को छोड़ दो, भगवान का नाम लो, और किसी भी भगवान के भक्त का अपराध मत करो। जो भगवान का नाम लेता है ऐसे भक्तियों का दिल मत दुखाओ, कभी उनका बुरा मत करो, शब्द से बुरा मत करो, एक्टिंग कोई कार्य करने से बुरा मत करो, ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे उनको दुख पहुंचे, क्योंकि मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय है। आप कितना भी पाप छोड़ दोगे और शुद्ध खाना खाओगे, मेरे नाम का जप करोगे, लेकिन मेरे भक्तों को अगर दुख दोगे तो मैं आपकी परवाह नहीं करूंगा, सब पाप आपके अंदर दोबारा प्रवेश करेंगे छोड़ने के बाद भी, ऐसे वो कहते हैं। और कलयुग में कोई भी नियम नहीं है कि आपको तपस्या करनी है, ध्यान करना है, क्या करना है, संन्यास लेना है, परिवार को छोड़कर दूर जाना है, हाँ बहुत सारा किताब पढ़ना है शास्त्र का, ऐसा कोई नियम नहीं बताया है, हमारा दिमाग ही नहीं उतना पढ़ने के लिए और समझने के लिए। केवल भगवान का नाम लो, पाप मत करो, और भगवान के भक्तों का अपराध मत करो। भगवान के भक्त जहां पर भी है, काम की जगह पर है, पड़ोसी में है, हाँ बिरादरी में है, इलाके में है, मंदिर में है, कहीं हमारे पास कहीं भी भगवान के भक्त होंगे, भक्ति विधान में तो काम करने वाले बीच में भगवान के भक्त हैं, उसमें साथ काम कर रहे हैं भक्त भगवान के भक्त, उनके अंदर आपको मिलेंगे जो भगवान के नाम का जप करते हैं, जो रिक्शा लिया है तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, चार नियम पालन करते हैं, भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग आपको इसके अंदर मिलेंगे काम करने के समय। उनका कभी अपराध मत करना, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने भी कहा हुआ है कि जो कम से कम सबको भगवान का भक्त है, एकदम सबसे नीचे है, वो भी मुझे प्यारा है। ऐसा नहीं कि संत बन चुका है भक्तों में से वही मुझे प्यार है, ऐसा नहीं। जो मेरे से सीनियर है वही इंपॉर्टेंट है, जो जूनियर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है वो भगवान को प्रिय है, और उसके प्रति अपराध करना भगवान सहन नहीं करते। अगर मैं सोचूंगा कि मैं 25 साल से भक्ति कर रहा हूं और कोई 2 साल से कर रहा है, बोले ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको कौन पूछता है, तो जूनियर है, मैं इसका अपराध कर सकता हूं। लेकिन एक सीनियर भक्त भी जूनियर भक्त का अपराध करते हैं तो उसको उसका दंड भोगना पड़ता है, क्योंकि भगवान के सामने कोई जूनियर और सीनियर नहीं है। पहले हम लोग सोचते हैं कि मैं सीनियर हूं, आप जूनियर हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एक बार दुनिया में भगवान का नाम लेता है और पाप को छोड़ देता है, वो भगवान के लिए प्रिय हो जाता है और उसका आप अपराध नहीं कर सकते। डर के रहो इस बात से, क्योंकि भगवान एक बार आप पाप भी करोगे ना तो आपको माफ कर सकते हैं अगर आप नाम का जप करोगे। लेकिन पाप और अपराध के अंदर अंतर है। पाप जो है वो करने से खुद को नुकसान होता है, अपराध करने से दूसरे को दुख पहुंचता है। इसलिए अपराध से लड़ना सीखो। भगवान के भक्त जो होते हैं उनका अपराध नहीं करना चाहिए किसी भी कीमत पर, और गलती से हो भी जाता है तुरंत माफी मांग लो और छूट जाओ उसमें से, क्योंकि भगवान के भक्त जो है तुरंत माफी मांगने से माफ कर देते हैं। लेकिन माफी मांगना हमारा फर्ज है, माफी अगर नहीं मांगते हैं तो भगवान उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते। इसलिए पाप एक जगह पर है, अपराध दूसरी जगह पर है। पाप जो है वो भगवान का नाम लेकर उसको नष्ट कर सकते हैं, अपराध जो है वो भगवान का नाम लेकर नष्ट नहीं कर सकते। उसके लिए केवल एक ही रास्ता है, उसी भक्त की माफी मांगना जिसका अपराध किया है, तब भगवान उनको मुक्त कर देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या है, भक्ति का मार्ग जो है कलयुग का बहुत सरल और आसान कर दिया है। और ऐसा भी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा पंडित है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, वही हरे कृष्ण का जप कर सकता है, ऐसा भी नहीं है। पढ़ा लिखा नहीं है, जन्म से ब्राह्मण है नहीं है, जन्म से क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, किसी भी जाति का है, बैकवर्ड क्लास का है और ओपन मेरिट का है, कौन से भी क्लास का है, वो ये नाम को ले सकता है। ऐसा भी नहीं है कि जो बूढ़ा हो चुका है उसको ही वही ले सकता है, नहीं, बच्चा भी ले सकता है, स्त्री भी ले सकती है, पुरुष भी ले सकता है, पढ़ा लिखा भी ले सकता है, अनपढ़ भी ले सकता है, बहुत धनवान है वो भी ले सकता है, और जो फटीचर है वो भी ले सकता है, कोई फर्क नहीं उसके अंदर। जो मनुष्य है वो ले सकता है, वो चाहे सुंदर हो, कुरूप हो, बीमार हो या अच्छे हेल्थ वाला हो, दिखने में सुंदर हो या गलत दिखने वाला हो, काला हो या गोरा हो, इंग्लिश बोलने वाला हो या मराठी बोलने वाला हो, कोई बंधन नहीं है उसके लिए। हर एक व्यक्ति भगवान का नाम ले सकता है। हाँ, उसको अगर लेना नहीं है तो उसकी इच्छा है, मैं लेना नहीं चाहता वैसा बोल सकता है, लेकिन मैं ले नहीं सकता ऐसा नहीं बोल सकता, तो वो ले सकता है। भगवान ने जबान दिया है उसको, गरीब से गरीब भी होगा वो ले सकता है, छोटा बालक भी ले सकता है, जिसको अभी बोलने को नहीं आ रहा है वो भी हरे कृष्णा हरे राम बोल सकता है। ऐसा भगवान ने बना के रखा है। क्यों बना के रखा है आसान इतना कि वो कोई भी कर सकता है, तो बहाने नहीं बनाएगा फिर, इतना मुश्किल है, आप बोल रहे सुबह उठो, आप बोल रहे ये करो, पढ़ाई करना चाहिए, कोई बंधन नहीं रखा। हम लोग आते ना सुबह रोज, नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता न स्मरणे न काल, क्या बोल रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण करने के लिए कोई बंधन नहीं है, इसको कोई नियम नहीं है उसके लिए, कभी भी ले सकते हो, सुबह शाम दोपहर को कभी भी जब मन भगवान करे तब मुंह से भगवान का नाम ले सकते हो। जो भगवान का नाम लेता है वो तो भगवान को बड़ा प्यारा हो जाता है, और हमको इस जीवन में भगवान से प्यारा होना है, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा, जानवर का जन्म देना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली बनना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु 8 तारीख को उनका जन्मदिन है, और उनका क्या कहना है, दोबारा इस दुनिया में मत आओ कष्ट भोगने के लिए, नाम लो खाली बस, नाम लो। बाइबल में भी वही लिखा है, नाम लो, कुरान में लिखा है अल्लाह का नाम लो, ग्रंथ साहिब में सिख धर्म में लिखा है नाम लो भगवान का, गीता में भी लिखा है भगवान का नाम लो, भगवत में लिखा है भगवान का नाम लो, हाँ सिख धर्म में, बुद्ध धर्म में, बाह्य धर्म में, धोराष्ट्र धर्म में, हिंदू धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, सब धर्म में एक समानता है, सब बोल रहे हैं भगवान को प्राप्त करना है तो इस समय उसका नाम लेना है, आसान कर देना हमारे लिए, कोई तपस्या का बंधन लगाया नहीं इसके अंदर, कोई भी नियम लगाया नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। उन्होंने वही जो पिछले जन्मों में बहुत मुश्किल था प्राप्त करने के लिए, इस युग में बहुत आसान कर दिया है, वही प्राप्ति है, मिलेगा आपको वही जो पहले तपस्या करके मिलता था, आज मिलेगा वही, लेकिन उसको आसान करके आपको दिया है। जिसको बोलते हैं ग्रैंड सेल लगता ना, सेल बहुत महंगी वस्तु होती है, दिवाली में सेल करो तो सस्ती मिलती है, तो सब लाइन लगाते हैं उसको सस्ते लेने के लिए, तो भगवान का सेल है ये कलयुग में। और कब तक चलेगा ये, तुम्हें बहुत कम है याद रखना, ज्यादा जल्दी चलेगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में हुआ था, आज कितने साल हो गए उसको बोलो, 14 और 12 कितने होते हैं, 26 ना, इज दैट राइट, 14 और 12 कितने होते हैं, 26, और 526 साल हो गए उनका जन्म लेकर, भगवान का जन्म होगा 526 साल हो गए। उन्होंने कहा है मेरे जन्म से 10,000 साल तक जो भी मेरा नाम लेगा, नाम को ग्रहण करेगा, उसका आश्रय लेगा, वो मेरे धाम में आएगा, लेकिन 10,000 साल के बाद में घोर कलयुग शुरू होगा, उसके बाद में मेरी गारंटी नहीं है, मेरा समय खत्म हो जाता। तो मेरे प्राय प्यारे भाई और बहनों, मेरी विनती आपको यह है कि 10,000 साल तक वेट मत करना, प्लीज डोंट वेट टिल 10,000 ईयर्स, इसी जन्म में उसको पूरा करना है, और करना कुछ नहीं है, अलगाम लेना भगवान का, बस उनका भक्त बनना है। अगर हम लोग बोलेंगे चलो कोई बात नहीं बहुत समय है और 2-4 जन्म ले सकते हैं हम लोग, उसके बाद भी जा सकते हैं, तो आनंद लेने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर टाइम पास थोड़ा करेंगे, गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में भगवान का नाम लेने की अनुकूल स्थिति होगी कि नहीं होगी। हमारे घरों के अंदर गर्भपात हो रहे हैं, हमारी भाभियां गर्भपात कर रही हैं, मांस खाया जा रहा है, गाय का मांस भी खाते हैं, नशा कर रहे हैं, पता नहीं अगले जन्म में जब जन्म लेंगे तो हमारे परिवार के लोग क्या करेंगे। अमेरिका में हो रहा है ना अभी, ऑलरेडी छोटी लड़की जा रही है, कहां बोल रही है, मेरी दादी की 4वीं शादी में जा रही है, मेरी दादी की 4वीं शादी में जा रही है, मतलब दादी मतलब वो पोती जन्म हो गया उसका, क्योंकि दादी अभी तो शादी ही कर रही है, एक को छोड़कर दूसरा शादी कर रही, ये सब यहां पर होने वाला है, हो रहे हो भी रहा है, ये मत समझना कि यहां पर नहीं होगा, इतना गंदा जीवन है वो क्या बताए। एक शादी हो रही है तो कह रही है कि मेरे पहले 4 बच्चे और पहले मेरे 3 बच्चे, साथ में आकर एक जोक है ऐसा उसका, एक जोक है, वो जोक ये है कि पति अपने पत्नी को बोल रहा है कि मेरे बच्चे और तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चों से झगड़ा कर रहे हैं, मतलब क्या, मेरे जो पहले शादी के बच्चे थे और तुम्हारे जो तुम्हारे पहले शादी के बच्चे थे, हमारे जो बच्चे हुए उनका झगड़ा कर रहे हैं। इतना बेकार जीवन है, देखो कुत्ता भी लिखा जैसा होगा जीवन, एक मादी की दूसरी मादी, तीसरी मादी, चौथी मादी, पता नहीं कौन किसका बच्चा है, कोई कुत्ते के बिल्लों को पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है, जैसे ही मूड आया तो वो जो कुत्ते का पिल्ला बड़ा हो गया, वो बड़ा होने का अपनी माँ के साथ सेक्स करता है, तो जानवर का जीवन है, यही इंसान के जीवन में हो रहा है, इंसान को जो है आगे बढ़ने के बजाय जानवरों का अनुकरण कर रहे हैं, और हम लोग अगर दोबारा जन्म लेके आएंगे तो सारी गंदगी हमारे जीवन में उनको दिखाई पड़ेगी, आप भी आ रही है धीरे धीरे, मैंने यहां पर भी कई उदाहरण आपको दिए हैं पहले भी, क्या क्या हो रहा है समाज के अंदर, इतना गंदा हो रहा है हम लोग यकीन नहीं कर सकते, इसलिए और वेट मत करना कि ये जन्म में मरेंगे फिर और जन्म लेंगे फिर बाद में अपना जीवन सुधार के भगवान के पास जाएंगे, नहीं, इसी जीवन में आपको निकलना है यहां से, और रास्ता भी आसान बना कर रखा है चैतन्य महाप्रभु ने, उनका नाम लो जो तो प्राप्ति यहां पर हॉस्पिटल में आपको हो रही है, फ्री में मिल रहा है भगवान का नाम, हाँ कोई रूल नहीं है उसके लिए, ड्यूटी आवर में आपको चांस मिल रहा है उनका नाम लेने के लिए, ऑन ड्यूटी विद पगार, उसको लो, और क्या करना चाहिए बोलो, ऑन ड्यूटी आवर में कोई दुनिया में सस्ता ऐसे है क्या, आपको ड्यूटी आवर में आधा घंटा एक घंटा भगवान के विषय में सुनने के लिए टाइम मिल रहा है, विनती कर रहे हैं आ जाओ ऊपर से प्रसाद भी देते हैं, ये लो खाओ, कुछ खर्चा भी कर रहे हैं, कोई किसी को पड़ी नहीं है, बोला काम करो, आने का समय जाने का समय नहीं है, ओवर टाइम बेटा कुछ नहीं कर, परेशान है उसके ऊपर। साइकिल पे ट्रीटमेंट लेते हैं क्योंकि परिवार का समय ही नहीं मिलते के लिए, 6 बजे निकलते हैं 11:30 का लौट के आते हैं। इतना भयंकर दुनिया है बाहर का। और हमारे संस्था में ऑन ड्यूटी मंगलवार को बुधवार को आपको आने को बोल रहे हैं, आ जाइए प्रसाद पाइए, भगवान का नाम जपिए, आधा घंटा एक घंटा प्रसाद लीजिए, उसके बाद में कथा सुनिए, उसके बारे में आनंद लीजिए, उसका यात्रा में आइए, उत्सव मनाने ऑन ड्यूटी आपको मौका दे रहे हैं भगवान के साथ जुड़ने का। इतना होने पर भी आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो और चैतन्य महाप्रभु को क्या कृपा करेंगे, और क्या कृपा हो सकती है बताओ। इतना सब हो रहा है, कृपा है आपकी, लीजिए उसको। हम लोग क्या है ना, देने में भी कंजूस है और लेने में भी कंजूस, जो मिल रहा है फ्री में उसको भी हम लोग कंजूसी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का उद्धार कौन कर सकता है, और क्या कर सकता है। घोड़े को हम लोग नदी के पास लेके जा सकते हैं, उसका मुंह पानी में डुबा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीना नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पानी तो उसको दूध को पीना है ना। तो घोड़े को नदी के पास लेके जा रहे हैं लेकिन घोड़ा पानी नहीं पी रहा है तो क्या करेंगे हम लोग। तो भगवान की कृपा की नदी जो है उसके पास आपको परिचय करा रहे हैं, उसके पास लेके जा रहे हैं, पियो उसको, ले लो आनंद, ले लो जीवन का उद्धार कर लो, इसी जीवन के लिए तो दिया है भगवान ने सब कुछ। नहीं करेंगे तो फिर हमारे से दुर्भाग्य कौन है वो, हाँ दुर्दैवम लोग बोलते ना, नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता न निमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि। लास्ट में क्या बोलते हैं बोलो बोलो, दुर्दैवम ईदृशमिहा जनी न अनुराधा। इतना करने पर भी इतना दुर्दैव है, इतना दुर्भाग्य है कि हमको अभी तक उस भगवान के नाम के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, न अनुराधा कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई प्रेम नहीं है उसके प्रति। ऐसा रोज सुबह हम गाते हैं ना, उसका मतलब क्या है, अपने दुर्भाग्य तो पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम इसके आगे। ओके सब लोग बोलिए हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
कृष्णा।